तीर्थ शाश्वत अयोध्यापति त्वं प्रभो त्वं त्रिलोकाधिपतिरपि पुनाशा प्रभो चक्रवर्ती भरत स्वामी पदयुग्मयो सर्वदा नमामि त्रियोगी मुदा। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की जो अधिपति सम्राट हुए और उन्होंने 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, अयोध्या पति बने और उसके बाद त्रैलोक के अधिपति बन करके जिन्होंने सिद्धालय के अंदर सिद्धों के बीच में अपना स्थान बनाया, ऐसे भगवान भरत स्वामी के चरण युगल में नमन करते हुए उनके पवित्र कथानक को प्रारंभ करती हूँ। आपने सुना है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती रहे। यशस्वती महारानी ने इस पुत्र के गर्भ में आने के बाद उन्होंने 5 स्वप्न देखे थे और उन सपनों के फल में अपने पति तीर्थंकर महाराजा ऋषभदेव से जाना था कि आपके गर्भ में चक्रवर्ती पुत्र का अवतरण हुआ है। उन्होंने जन्म लिया, क्रम क्रम से वह दिन भी आ गया जब वे अपने चक्र रत्न के द्वारा 6 खंड की पृथ्वी को जीत लेते हैं और 6 खंड पृथ्वी को जीतने के बाद बड़े भावों के साथ अयोध्या नगरी की ओर आते हैं। उसके बीच में पुनः कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान ऋषभदेव के समोसरण का दर्शन करते हैं। अयोध्या वासियों को भारी इंतजार था, लेकिन अयोध्या के बाहर उनका चक्र रत्न रुक जाता है। भारत के कथानक से कोई परिचित हो या ना हो, लेकिन इतना तो हर आदमी जानता है कि भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ था और उसमें बाहुबली विजयी हुए थे। भरत पराजित हुए थे, लेकिन बाहुबली ने जाकर दीक्षा लेकर ध्यान योग में लीन हो गए थे। उसके बाद भरत का चक्र अयोध्या में प्रवेश किया और उन्होंने भेद विज्ञान के साथ 6 खंड की पृथ्वी का उपभोग किया। उस समय का कथानक आता है कि जब चक्र रत्न रुक जाता है, 98 भाइयों के पास समाचार जाता है, वे सब जा करके ऋषभ देव भगवान के समोसरण में दीक्षा ले लेते हैं। बाहुबली के पास समाचार जाता है, बाहुबली ने भी भरत की दासता स्वीकार करने को अस्वीकार कर दिया और अब रण क्षेत्र में दोनों की सेनाएं डटी हुई हैं, युद्ध की भेरी बजने वाली है। इतने में मंत्रियों के अंदर बहुत भारी ऊहापोह होता है कि अरे इस युद्ध के अंदर तो बड़ा भारी संहार होने वाला है, कोई देवता तो आ जाए जो इस युद्ध को रोक देवे। दोनों पक्षों में मंत्रीगण बड़े चिंता मग्न हैं और सोच रहे हैं इन दोनों भाइयों का युद्ध क्रूर ग्रह के समान है और शांति का इसमें कोई उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भाई चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। पता नहीं किसकी जय और किसकी पराजय होगी। उसके बाद किसी मंत्री के मन में बड़े अच्छे विचार आते हैं और वे सबसे पहले जाकर भरत के सामने प्रस्ताव रखते हैं, स्वामिन आप दोनों महाबलशाली हैं, महापराक्रमी हैं और भाई भाई दोनों इसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, अतः सैनिकों के युद्ध से महान हिंसा के सिवाय जल्दी कुछ निर्णय होने वाला नहीं है, अतः आप दोनों धर्म युद्ध कर लीजिए और प्रजा की हिंसा होने से बच जाइए। मोक्ष जाने वाले पराक्रमी राजाओं के लिए प्रजा की हिंसा उचित नहीं है, तो हम क्या करें? भरत पूछते हैं, आप धर्म युद्ध कर लीजिए दोनों भाई। वो कैसे होंगे? बोले दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध, दोनों ही पराक्रमी, और इन तीनों युद्धों में जो कोई विजयी होगा दूसरे की दास्ता को स्वीकार कर लेगा। भरत को बात जच गई और वे कहते हैं, जाओ बाहुबली के पक्ष से भी पूछो। बाहुबली की सेना में भी जब पूछा गया, बाहुबली के पास भी ये समाचार जाता है, उनको भी जच जाती है बात कि वास्तव में हमें प्रजा को युद्ध में मरते हुए नहीं देखना है, हम दोनों भाई धर्म युद्ध करेंगे और हार जीत निश्चित हो जाएगी। अब युद्ध की भेरी बजती है, दोनों पक्षों में निर्णय होता है, बिगुल बजाया जाता है कि सारी सेनाएं पीछे हट जाएं और अब दोनों भाई केवल रण क्षेत्र में आ जाएं, दोनों का युद्ध होगा। पहला युद्ध दृष्टि युद्ध, दोनों आंखें मिलाते हैं एक दूसरे से और भरत का शरीर, महापुराण के अंदर वर्णन आया है, भरत का शरीर स्वर्ण वर्ण का था, ये तो बिल्कुल अपने पिता के समान थे स्वर्ण वर्ण के, और जितने भी योग शुभ योग थे भगवान ऋषभ देव के जन्म में, वे सारे शुभ योग भरत चक्रवर्ती के जन्म में भी थे, तो वे स्वर्ण वर्ण के भरत और हरित वर्ण के बाहुबली दोनों ही विजयार पर्वत के समान लग रहे थे, कोई निषद पर्वत के समान तो कोई विजयार पर्वत के समान, ऐसे ऊंचे ऊंचे पराक्रमी पर्वत के समान बलशाली। प्रारंभ होता है दृष्टि युद्ध, दोनों भाई आपस में एक दूसरे को निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं, उस समय ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों भाई बहुत दिन से बिछुड़े हुए थे और अब एक दूसरे को देख देख करके तृप्त नहीं होते। महानुभाव जिन सेन स्वामी ने तो वर्णन किया ही है, पूज्य ज्ञानमती माता जी ने सन 1965 में श्रवण बेलगोला बाहुबली के अंदर चातुर्मास किया था और तब 15 दिन का मौन लेकर के ये भगवान बाहुबली के पास बिंदगिरी पर्वत पर ध्यान करती थी। ध्यान के अंदर इनको मध्यलोक की 13 दीप की सारी रचना प्राप्त हुई थी पिंडस्थ ध्यान में और उसके बाद इन्होंने अनेक स्तुतियां लिखी कन्नड़ के अंदर, संस्कृत में कन्नड़ में भद्रबाहु स्वामी की स्तुति लिखी, संस्कृत के 108 पद्यों में भगवान बाहुबली की खूब अलंकारिक भाषा में स्तुति लिखी और उसी समय भगवान बाहुबली का चरित्र हिंदी में लिखा, उसको पढ़ करके बड़ा रोमांच होता था। उस समय जब दोनों भाई दृष्टि युद्ध कर रहे हैं तो क्या कल्पना करती हैं ज्ञानमती माता जी, दोनों भ्राता दृष्टि युद्ध में अनिमिष द्रग कर आपस में, मानो तृप्त नहीं होते हैं चिर भी युक्त अब मिलने में। कल्पना की है उपमा अलंकार बांधा है, भरत देह है पंच शतक धनु भुज बलि पंच शतक 25 ऊंचे अधिक बाहुबलि अग्रज नेत्र हुए टिमकार सहित। किसके नेत्र? भरत के, क्योंकि भरत को यूं देखना पड़ता था। बाहुबली ऊंचे थे, भरत 500 धनुष के 2000 हाथ के थे, बाहुबली 525 धनुष के 2100 हाथ के थे। तो बाहुबली यूं करके देखते थे और भरत को यूं करके देखना पड़ता था। तो जो कोई यूं करके देखेगा ऊपर को, तो सहज है कि उसकी दृष्टि टिमकार सही जल्दी हो जाएगी, आंखों में पानी आ जाएगा। और बाहुबली नीचे दृष्टि से देख रहे थे, भरत को देख रहे थे। तो काफी देर तक देखते देखते भरत की दृष्टि नीची हो गई और एकदम बाहुबली के पक्ष से जय जयकार होने लगा, बाहुबली भगवान की जय जय जय, और उनकी जीत की भेरी बज गई। पहले युद्ध में बाहुबली विजयी हो गए। उसके बाद आती है बारी जल युद्ध की, दृष्टि युद्ध के बाद जल युद्ध की। एक बहुत बड़ा सरोवर तैयार किया गया जिसके अंदर दोनों भाई उतर पड़े। पुनः सरोवर में प्रविष्ट हो जल से क्रीड़ा युद्ध किया, अग्रज के मुख पर बहु जल से व्याकुल करके जीत लिया। पुनः रंग भूमि में उतरे बाहु युद्ध महान हुआ, मानो भ्रातृ मिलन आलिंगन प्रेम करे ये भास हुआ। यानी जल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत के मुख पर खूब जल के छींटे दे दे करके और उन्हें पराजित कर दिया। फिर से उनकी जय जयकार होने लग गई। अब क्या है भरत के चरित्र में, बाहुबली के पात्र को तो आपको बताना ही पड़ेगा, उसके बारे में जानना ही पड़ेगा। तो बाहुबली ने जल युद्ध में भी विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद मल्ल युद्ध की बात आई। दोनों ही एक से एक योद्धा थे, रंगभूमि में उतरते हैं और जब मल्ल युद्ध करते हैं तो उस समय के भाव को प्रस्तुत किया है। कैसा लग रहा था कि ये भ्रात मिलन दोनों के आलिंगन के द्वारा हो रहा है और काफी प्रेम की बातें दोनों के अंदर हो रही हैं, लेकिन वो तो चल रहा था युद्ध। युद्ध कुशल व्यायाम सुदृढ़ तनु सब जन मन को चकित किया, लीला मात्र से बाहुबली ने चक्राधिप को उठा लिया। अर्थात तीसरे युद्ध में, मल्ल युद्ध में भी बाहुबली विजयी हो गए। वे चक्रवर्ती को लेकर के एकदम घुमाना चाहते थे, लेकिन मन के अंदर तुरंत विचार आता है कि बड़े हैं, पिता के समान है, इनका अभिनय करना उचित नहीं है। छह खंड वसुधा पति अग्रज की अभिनय करना उचित नहीं, अतः बिठाया निज कंधे पर गौरव को रख लिया सही। फिर क्या होता है, जय जय बाहुबली बलशाली जय 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 कार हुआ, अहो चक्रजित अहो पराक्रम सुर नर सब जय घोष किया। तीनों युद्ध में बाहुबली जीत गए और भरत की पराजय हुई। तो क्या बाहुबली चक्रवर्ती बन गए? बाहुबली चक्रवर्ती नहीं बन गए, युद्ध जीता लेकिन चक्र तो भरत की आयुधशाला में उत्पन्न हुआ था। अब जय जयकार होने लग गई, भरत की पराजय हुई, भरत बहुत खेद खिन्न हुए। तब एकदम क्या करते हैं, लज्जित खिन्न कुपित चक्रेश्वर चक्र रत्न संस्मरण किया, भुज बलि बध करने को उत्सुक चक्र घुमा कर चला दिया, घृणित भाव से कर्ण बंद कर जनता की ध्वनि प्रकट हुई, बस बस साहस बस होवे अब देख नहीं ये सके मही। असम के लोग वहां इकट्ठा थे, सारी सेनाएं थी, देवता भी उस युद्ध को देख रहे थे, अनेक देश के राजागण आए थे, क्योंकि चक्रवर्ती को अयोध्या में प्रवेश कराना था। सारी राजा ये दृश्य देख रहे थे। अकस्मात क्या होता है जब तीनों युद्ध में भरत पराजित हो गए, अब उनके सामने कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने चक्र रत्न को स्मरण किया, जिस चक्र रत्न से भी कहते थे कि चलो अयोध्या में प्रवेश करो। एकदम चक्र को स्मरण किया और बाहुबली पर चला दिया। यानी उस समय उनको कुछ भी समझ नहीं आया, अपनी पराजय से एकदम इतना खिन्न हो गए भरत, और उस समय सारी जनता भरत को धिक्कारने लग गई। ये है कथानक युग की आदि का, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस युग का अभिशाप रहा है, जिसे हुंडाव सर्पणी काल का दोष कहा जाएगा। अन्यथा किसी भी चक्रवर्ती का ऐसा पराभव अपमान अभिनय कभी नहीं होता। ये असंख्य अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीतती है, तब एक हुंडाव सर्पणी काल आता है, और हुंडाव सर्पणी काल के अंदर कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। पहला दोष था तीर्थंकर ऋषभदेव तृतीय काल में पैदा हो गए, उन्हें चौथे काल में पैदा होना चाहिए था, तृतीय काल में पैदा हो गए। दूसरा दोष आया चक्रवर्ती का पराभव हो गया, और जब सारे राजाओं के बीच में ऐसा अपमान हुआ, भरत ने चक्र को चला दिया, तो चक्र का नियम है कि वो अपने वंशज पर अपने खून पर नहीं जाएगा, उसको नहीं मारेगा। वो जाकर के बाहुबली की प्रदक्षिणा दे करके उनके सामने खड़ा हो गया। सारे लोग उस समय भरत को धिक्कारने लग गए, बस करिए भरत जी, आप तीनों युद्ध में पराजित हो चुके हैं, और अब देखिए चक्र रत्न भी आकर बाहुबली के समीप टिक गया है, अब आप क्या चाहते हैं? भरत कुछ बोलते उससे पहले बाहुबली भगवान सोचते हैं कि मेरे निमित्त से इतना सब कुछ हो गया, मेरे द्वारा भरत का अपमान हो गया, आप भरत इतने वैभवशाली होते हुए भी धिक्कारे जा रहे हैं, ये सब मैंने क्या किया? यानी आप इधर भरत खेद खिन्न है और उधर बाहुबली खेद खिन्न है कि ये सब मैंने क्यों कर डाला, ये तो मेरे पिता के समान थे, मैंने इनके चरणों में नमन क्यों नहीं किया, ये वैभव किसके साथ जाने वाला है, ये चक्र लेकर मैं कहां जाऊंगा। तुरंत वे भरत के चरणों में नमन करते हैं, हे भाई हे अग्रज, मेरी से गलती हो गई और आप अपने राज्य का सदुपयोग कीजिए, मैं इस राज्य में आने वाला नहीं, मैं तो अभी इसकी विनश्वरता को क्षण भंगुरता को समझ चुका हूं, और मैं जाकर पिता के चरणों में दीक्षा लूंगा। आप चक्रवर्ती हैं, आप रहिए चक्रवर्ती, अयोध्या का राज्य ही नहीं छह खंडों का राज्य कीजिए, लेकिन अब मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। भरत बहुत लज्जित भी होते हैं और अपनी व्यवस्था को भी देख रहे हैं, एक लज्जा की अनुभूति और एक मजबूरी, क्योंकि चक्र रत्न के आगे कुछ भी नहीं हो सकता था, वह देवों को नहीं चीज थी। अगर चक्र रत्न से वो कह भी देते चलो बाहुबली ने नहीं माना, ना सही, एक ही तो है, चलो तुम अयोध्या में प्रवेश करो, तो भी वो नहीं जाता, क्योंकि देवों को नहीं चीज थी। जब तक एक एक बच्चा बस में ना हो जाए, तब तक चक्रवर्ती की विजय पूर्ण नहीं मानी जाती थी। तो आज चक्रवर्ती खेत खिन्न हो रहे हैं, कहते हैं बाहुबली ऐसा मत करो, चलो हम तुम साथ साथ राज्य करेंगे और उसके बाद में एक साथ दीक्षा लेंगे, अब तुम मुझे ज्यादा लज्जित मत करो। बाहुबली कहते हैं नहीं भैया, मैं इस राज्य को स्वीकार करने वाला नहीं, मैंने इसकी क्षण भंगुरता को देख लिया कि जिसके लिए भाई भाई आपस में युद्ध करने के लिए आ गए, मेरे मन में भी जाने क्या हो गया, आपके मन में भी क्या हो गया, और हम सब ने भगवान ऋषभदेव के पुत्र होते हुए भी आपस में आज झगड़ा किया है, ऐसे वैभव को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बाहुबली तो चल दिए दीक्षा लेने के लिए। बड़े सुंदर सुंदर वाक्य पूज्य माता जी ने इसमें संजोया। एक साल तक वे खड़े रहते हैं ध्यान में। कोई कहते हैं अंगूठे के बल पर खड़े रहे, नहीं, कोई अंगूठे के बल पर नहीं, दोनों पैर जमा करके और खड़गासन मुद्रा में 1 साल तक खड़े रहे। कोई कहते हैं कि बाहुबली के मन में शल्य आ गई कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, नहीं, जब क्षमा यातना युद्ध क्षेत्र में हो गई कोई शल्य नहीं थी। शल्य माने कांटा, कांटा कोई नहीं था, क्योंकि बाहुबली को ध्यान करते करते 1 साल के अंदर अनेक रिद्धियां हो गई, और जिनके शल्य हो तो उनको रिद्धि नहीं हो सकती। बस उनके मन के अंदर केवल एक विकल्प था, और वो विकल्प था कि मुझसे भरत जी को संक्लेश हो गया, और इसी पश्चाताप में थोड़ा थोड़ा कभी विकल्प आ जाता था, इसके कारण उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था, ये उनका प्रेम था, सौहार्द था, लेकिन सौहार्द और प्रेम भी केवल ज्ञान होने में बाधक हो जाता है। इधर भरत सोचते हैं कि मेरा भाई बाहुबली चला गया, आखिर 1 साल हो गया, केवल ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं जाऊंगा बाहुबली की पूजा करूंगा, रत्नों के थाल दिव्य सामग्री लेकर के चलते हैं। इधर से भरत जाते हैं, उधर से बाहुबली का मन आकृष्ट होता है, विकल्प हट जाता है, दोनों की टेलीपैथी मिलती है, किसका विकल्प, कौन सा विकल्प, अरे बाहुबली, हे आत्मन, आत्मा तो सबकी अकेली है। इधर भरत कहते हैं भेद विज्ञान में आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, कौन किसका भाई, किसका राज्य, किसका वैभव। इधर ये पूजा करते हैं, इधर बाहुबली का विकल्प शांत हो जाता है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, और उस गंध कुटी में बैठकर भरत भी उनकी दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। बड़ा रोमांचक वर्णन है भरत बाहुबली स्वामी का। मैंने आपको इसलिए सुनाना शुरू किया, अयोध्या की धरती पर ये तमाम अघटित अनहोनी घटनाएं घटी, और ऐसे इतिहास अनेक इसके गर्भ में छिपे हुए हैं, और भरत भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, और उन्हीं के पुत्र 923 पुत्र जो मोक्ष गए उसी भव से, उनका भी जिन मंदिर बन रहा है उनकी कहानी से भी हमें आपको परिचित करवाना है। सुनते रहिए और अपने मन में भी भेद विज्ञान को प्राप्त करते रहिए। आप सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद। जय लो भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।